भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रन्था श्रीमद्भागवतं सात्वं स्कं अध्याय संख्या 2। अध्याय का नाम है असुराज हिरण्यकश्यप, श्लोक संख्या 38। अहो वयं धन्यतमाय दत्र त्यक्ता पृथिव्यां न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। अहो वयं धन्यतमाय तत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, यह कितना आश्चर्यजनक है कि वयोवृद्ध महिलाओं को हमारे जैसा भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं तो भी हम हिंस पशुओं ने भी हम तो भी हिंस पशुओं ने तो हमें ना तो हमें खाया ना विनष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस भगवान ने हमें माता के घर में भी सुरक्षा प्रदान की है वे ही हमारी सर्वत्र रक्षा करते रहेंगे। तात्पर्य, भगवद्गीता जैसा कि भगवद्गीता में 18:61 कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदिशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार भगवान सबों की रक्षा करते हैं और भोगने के लिए जीव को शरीर प्रदान करते हैं। सब कुछ भगवान के आदेश से होता है, अतः हमें जीव के जन्म तथा मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान द्वारा नियोजित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता 15:15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम पोहनम च, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मनुष्य को चाहिए कि हृदय में स्थित भगवान की आज्ञा अनुसार ही कर्म करे, किंतु जीव स्वतंत्र होकर कर्म करना चाहता है, अतः भगवान उसे कर्म करने तथा फलों का अनुभव करने की छूट देते रहते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता उसे इस भौतिक जगत का भोग करने की सुविधा दे दी जाती है। भगवान बद जीव को रोकने की बजाय भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसे परिपक्व होने अनुभव होने पर अनेक जन्मांतरों के बाद बहुनाम जन्मनामंते वह यह समझे कि वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही सारे जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और साथ ही स्वागत करते हैं उन भक्तों का जो कि इंटरनेट पर भी देखते हैं, उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं जो दिखाई दे रहे हैं उनका स्वागत करें, तो लोग जो लोग इंटरनेट पर भी देख रहे हैं वो भी अपना समय निकाल कर देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभुपाद जी के तात्पर्य ने इसमें बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। प्रसंग ये है कि हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध जब हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उनको उपदेश दिया और उपदेश देते देते उसने पुराणों से कथा सुनाई यमराज की, कैसे राजा सुयज्ञ थे जिनकी मृत्यु पर उनकी रानियां शोक कर रही थी और सायंकाल का पहले उनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन उन्होंने शरीर को ले जाना नहीं दिया दाह संस्कार के लिए। तो उस समय यहाँ पर वहाँ पे यमराज जी आते हैं एक छोटे बालक बनकर, और पिछले श्लोक में भी वो आश्चर्य प्रकट करते हैं कि ओह ये कितना आश्चर्यजनक है कि ये लोग मुझसे आयु में बड़े हैं, अच्छी तरह अनुभवी हैं, सैकड़े लोगों को उन्होंने जाते मरते हुए पैदा होते हुए देखा है और इन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, फिर भी वो मोहग्रस्त हैं, बद जीव अज्ञात स्थान में आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि हमसे आयु में बड़े हैं देखो फिर भी कितनी अज्ञानता में है। और इस श्लोक में भी वो कह रहे हैं अहो, यहाँ पे भी वो आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं और प्रभुपाद इस आश्चर्य को इसका भावार्थ करके लिख रहे हैं या कितना आश्चर्यजनक है कि वयोवृद्ध महिलाओं को हमारे जैसा भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है। इतनी बूढ़ी हो गई महिला, इतनी बड़ी हो गई हैं, फिर भी इनको मालूम नहीं है कि जीवन का क्या ज्ञान है। उसके बाद कह रहे हैं वयम धन्यता, हम कहते हैं हम धन्य हो गए, धन्य नहीं धन्यतमा, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। वयम मतलब हम, धन्यतमा मतलब हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। क्यों? त्यक्ता पितृभ्याम न विचिन्तयामः, हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया, हम अकेले घूम रहे हैं, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा, अभी तक हमें किसी ने खाया नहीं है। अबला, हम तो निर्बल हैं, कोई शक्ति नहीं है। वृकाद भी, जंगली पशुओं द्वारा हमें खाया नहीं गया, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों है ऐसा? कोई उनका कोई क्रेट नहीं है। सरक्षिता, उसने रक्षा की और आगे भी वो रक्षा करेगा क्योंकि उसने माँ के घर में हमारी रक्षा की। सरक्षिता यो ही गर्भ है, जब माँ के घर में भी हमारी रक्षा करनी तो आगे भी रक्षा करेगा। तो ये देखिए यमराज जी, यमराज जी का नाम सुनते हैं हम सब लक्षण डर जाते हैं, लेकिन यमराज जी 12 महाजनों में एक है। और प्रभुपाद कहते हैं कि यमराज जी की सेवा इतनी मुश्किल है कि उनको प्रचार करने का समय नहीं मिलता, तो कहीं कहीं बार उनको प्रचार करने का मौका मिलता तो बहुत रिलिश करते हैं। इसलिए जब मंडूक मुनि ने उनको श्राप दिया और वो विदुर बनकर आए तो यमराज जी को बहुत अच्छा लगा, तो इसी बहाने में धृतराष्ट्र को प्रचार करूँगा, है ना। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को प्रचार किया। यहाँ पर भी यमराज छोटे बालक बन के आ रहे हैं और खूब प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रचार किया ऐसा। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दो महत्वपूर्ण बातों को छुआ है। उसमें एक बात यह है कि कैसे कृष्ण सभी जीवों की रक्षा करते हैं, और प्रभुपाद ने उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। और अंत में बताया है कि प्रत्येक जीव का एकमात्र कर्तव्य है, क्या है? शरणागत होना। तो कैसे भगवान सब जीवों की रक्षा करते हैं और कैसे हम इस एकमात्र कर्तव्य को पूरा कर पाएंगे, ये आज हम इस कम समय को जो भी समय उसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान प्रत्येक जीव की रक्षा करते हैं, आप कह सकते हैं लगता तो नहीं है ऐसा, सारे हम देखते हैं सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं शहरों में, अभी उत्तराखंड में इतना कुछ हो गया, वो तो भगवान का धाम ही था, तो क्या रक्षा करते हैं भगवान, है ना। इतने गर्भपात हो रहे हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, तो भगवान क्या रक्षा करते हैं? क्या भगवान रक्षा कर रहे हैं? सबकी कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं मान लिया, लेकिन सबकी रक्षा करते हैं लगता है आपको कैसे करते हैं सबकी रक्षा? अभी उत्तराखंड में इतना बड़ा हादसा हुआ तो रक्षा क्यों नहीं की भगवान ने? और यहां लिखा जा रहा है भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, इस प्रकार भगवान सबों की रक्षा करते हैं, ये क्या मतलब हुआ बताइए? तो क्या मार दें उनको? क्यों? फिर क्या रक्षा की उन्होंने? सारा इतना तूफान आया, सब बह गए, सुनामी आता, सब चले जाते हैं, और इतने दुख हैं, इतनी बीमारियां हैं, तो क्या रक्षा करें? कि हमें लगता है जब संसार की बुरी हालत को देखकर कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, हाँ यज्ञ नहीं कर रहे तो फिर भगवान पीड़ित कर रहे हैं, हमें प्रकृति हमें पीड़ा दे रही है, तो भगवान की रक्षा कहाँ हुई? हाँ जी, हवा पानी दे दिया फिर कभी खींच लिया क्या रक्षा है ये तो व्यक्ति पहले हवा पानी दे दिया फिर उसको खींच लिया, मर गया व्यक्ति, क्या रक्षा क्या है? हाँ जी, तो फिर रक्षा नहीं करते, हाँ तो कर्म फल मिलना गया तो फिर कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, भगवान कहेंगे सॉरी मैं क्या कर सकता हूँ, कर्म फल है, मैं रक्षा नहीं कर सकता, ऊपर से नियम आया है ना, कर्म फल का क्या कर सकते हैं, नियम का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, लॉ है लॉ मैं थोड़ी तोड़ूंगा, है ना। फिर क्या है? हाँ जी पीछे बोलो, हाँ जी भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें समझना होगा भगवान की रक्षा करने का तरीका। प्रभुपाद कह रहे हैं जब बच्ची भोगना चाहता है तो भगवान उसको स्वतंत्रता देते हैं, जाओ भोग लो और फिर रिएक्शन भोग दो। भगवान इस जंग से रिएक्शन करते हैं कि हमारे अंदर इस संसार को लेके वैराग्य उत्पन्न हो जाए। भगवान रक्षा करते हैं अपने और जीव के संबंध की, जो जीव के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है उसकी रक्षा करते हैं कि किसी भी अवस्था में ये प्रेम उसका ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैं उसको पुनः जागृत कर सकूँ, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है ना, भगवान इस जंग से रक्षा करते हैं कि जीव जल्दी से जल्दी भगवत धाम वापिस आ सके। तो जो कर्म फल भी हैं, तो कर्म फल भी कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सजा नहीं है, ये भी भगवान की का एक तरीका है रक्षा करने का। भगवान कर्म फल के माध्यम से हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। और भगवान परम है, एब्सोल्यूट है, ये नहीं कि भगवान कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। और भगवान अच्युत है, अच्युत का अर्थ है वो कभी गिरते नहीं है, कभी चूकते नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे भूल गए किसी की रक्षा करने, उत्तराखंड में कुछ हो रहा था, ओहो मैं अपना यहाँ व्यस्त था, मैं उत्तराखंड में ये हो गया, देखो मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। और ये जीव तो ऐसे ही हैं, क्या सब कर्मी थे, खाते पीने वाले लोग, मरने दो इनको, मैं इनकी रक्षा नहीं करूँगा। नहीं, भगवान कर्म फल भी जो प्रदान कर रहे हैं वो ऐसे पनिशमेंट नहीं है, वो रक्षा कर रहे हैं इनकी, इनको मैं जल्दी से जल्दी वापस लाऊँ। तो किसी जीवन में बहुत संकट आ रहे हैं तो हमें लग रहा है भगवान हमारी रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं कि जादो उठो, इस संसार में सुख नहीं है, जल्दी मेरे पास आओ, भगवान इस चीज की रक्षा करते हैं। है ना, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा भगवान के प्रति कृतज्ञता कम हो जाती है, श्रद्धा कम हो जाती है। और अगर समझ लीजिए आप बोले ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ भगवान सबके शरीर की रक्षा करें, सर्वे सुखी ना पाऊं, तो सब जगह सुख, अक्सर हम देखते हैं बाहर के मंदिरों में एक वो जयकारा लगाते हैं, ऐसे प्रेम ध्वनि होती है, वो क्या बोलते हैं लास्ट में, ऐसा बोलते हैं ना, सबकी जय हो और सब में सुख हो, ये हो और सबको सुख मिल जाए। भगवान ने अपना प्लान चेंज कर दिया, भगवान ने कहा जितने बच्चियों को जो शरीर मिला वो कभी मरेंगे नहीं, नो बुढ़ापा नो बीमारी, ठीक है, जो धन चाहिए मिल जाएगा, जो सुख सुविधा चाहिए मिल जाएगा, बोलो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगे, सारी रक्षा मैं करूंगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई किसी को चीट करेगा ही नहीं, कोई अधिभौतिक क्लेश नहीं, कोई अधिदैविक क्लेश नहीं, कोई आध्यात्मिक क्लेश नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जैसा हम चाहते हैं वैसे हो जाएगा, सबकी रक्षा मैं कर रहा हूँ, है ना, अंदर से हमारी ये इच्छा कि ऐसी हमारी रक्षा हो। ठीक है, अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या होगा, क्या हो गया, सब कुछ इतना सुखी, सब कुछ बढ़िया, तो क्या होगा, है? हाँ, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो स्थापित नहीं हो पाएगा, और जब तक जीव का भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा जीव को रस नहीं मिलेगा, हमारा जीवन नीरस रहेगा, चाहे जितना मर्जी हमारा आयु लंबी हो जाए, सब कुछ तरह तरह के सुख सुविधाएं क्यों ना मिल जाए, लेकिन हमारे जीवन में रस तभी आएगा जब भगवान से संबंध स्थापित होगा। तो इसलिए भगवान हमारा और उनका तुरंत संबंध स्थापित हो जाए, इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य चिंतयंतो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्य भक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनके भगवान पूर्ण रूप से उनके योगक्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है वो प्रदान करते हैं, सब जीवों की भी करते हैं और सब जीवों जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनकी विशेष रक्षा करते हैं भगवान। आप बोलेंगे तो भगवान की पार्शियलिटी है कि जो सबको जो प्लान है आपका सिक्योरिटी प्लान है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है भगवान का जो सिक्योरिटी प्लान है वो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन अपने विशेष भक्तों के लिए विशेष है। ये वास्तव में भगवान की पक्षपात नहीं है, ये भी भगवान की निरपक्षता है, भगवान निरपक्ष रूप से पक्षपात है, इम्पार्शियली पार्शियल है, ये ऑफर सबके लिए अवेलेबल है। अनन्य भक्त बनने का ऑफर भी सबके लिए अवेलेबल है, ये नहीं कि अनन्य भक्त बनने के लिए आपको धनी होना पड़ेगा या गरीब व्यक्ति अनन्य भक्त बन सकता है या फिर कोई विद्या होनी पड़ेगी उसके बाद, अनन्य भक्त बनने का भी ऑफर सबके पास है। और जो अनन्य भक्त बनेगा भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जो कुछ उसके पास नहीं है मैं दूंगा, और जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा, मैं स्वयं प्रकृति के नियमों के द्वारा नहीं, स्वयं मैं करूंगा, ओके। और जो भी इस भक्ति के विधि में जुड़ता है, अनन्य भक्त अभी बना नहीं लेकिन अनन्य भक्त एक बनने का प्रयास भी कर रहा है, तब भी भगवान उसकी व्यक्तिगत रूप से रक्षा करते हैं। ये भगवान का इस रक्षा करने का तरीका है। और हम देखते हैं कि भगवान ने शरीरों की भी रक्षा की, शुद्ध भक्तों की। शीला प्रभुपाद जलदूत में थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैंने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया, मेरे को दो हार्ट अटैक आ गए। तो उनको क्या दिखाई दिया कि भगवान उनकी नाव स्वयं चला रहे हैं और बोल रहे हैं कौन तेरे पति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो उस समय उन्होंने भगवान ने अपने भक्त के शरीर की रक्षा की। सनातन गोस्वामी जिनका परसों तिरुभाव दिवस आएगा, उनके शरीर पे जब वो झारखंड से जा रहे थे, वृंदावन से पूरी आ रहे थे, तो झारखंड के जंगल से गुजरते हुए उनके शरीर पे वोपिंग कफ हो गया, शरीर पे घाव ही घाव हो गए, उसमें से पस निकलते रहे। उन्होंने सोचा मैं शरीर का फायदा क्या है, इससे मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा तो कर नहीं पाऊंगा, जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ के नीचे आके शरीर त्याग दूंगा, ठीक है ना। महाप्रभु अंतर्यामी उनको मालूम चल गया, उन्हें बोला, उनका आलिंगन किया और उनके सारा उनका जो भी दोष था उनके शरीर में ठीक कर दिया। और बोला तुमने सोचा भी कैसे आत्महत्या का, इस शरीर के माध्यम से मैंने धर्म की स्थापना करनी है, ये शरीर मेरा है आपका नहीं है। तो भगवान भक्तों के, शुद्ध भक्तों के शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे बताया यहाँ गर्भ में परीक्षित महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र का आक्रमण किया अश्वत्थामा ने, तो भगवान गए और भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उस छोटे बच्चे की रक्षा की, क्योंकि भगवान ने उस परीक्षित महाराज के द्वारा बहुत बड़ा कार्य करवाना था। तो भगवान अपने भक्तों के पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। तो हमने चर्चा की जब पूर्ण रूप से कर्मी है, भगवान को भूले हुए हैं, उनकी भगवान कैसे रक्षा करते हैं कि उनको भूलने देते हैं, चलो भूल जाओ और फिर भोगो। कितनी बड़ी अच्छी बात है, भगवान को हम भूल रहे हैं और भगवान भोगने की पूरी व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है वैराग्य का। हमारे घर में कोई बेटा पिता की आज्ञा का पालन ना करे तो कितना क्रोध आता है, तेरे को पाल पोस के बड़ा किया और तू अब ये हिम्मत, निकल जा मेरे घर से, चल शक्ल मत दिखाना। और कभी हिम्मत भी नहीं रखना, कोई उम्मीद मत रखना, जायदाद में एक हिस्सा भी दूंगा, एक सुई नोक जमीन में नहीं मिलेगी, भाग जा यहाँ से, आज से तेरे दरवाजे बंद, और दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, सर्वधर्मान परित्याजय बोले, अभी तक आया नहीं मैं शरण में, चल भाग यहाँ से, ऐसी दुर्गति करूंगा याद रखेगा। भगवान ऐसा नहीं कहते, नहीं करना चाहते मेरी भक्ति, नो प्रॉब्लम, जो भोगना चाहते हैं भोगो, लो तुम्हारे लिए है। और भगवान को मालूम है मैंने पूरा मटेरियल को इस ढंग से अरेंज कर रखा है, जितना ही प्रयास करेगा उतने उसको धक्के मिलेंगे, फिर अपने अनुभव से वो बहुत अनुभवी हो जाएगा और अंत में बोलेगा वासुदेवम सर्वमिति, ये मालूम चल गया मैं ही हूँ। तो ये भगवान का, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा। तो भगवान पूर्ण रूप से छूट देते हैं, प्रभु कहते हैं नो रिस्ट्रिक्शन, आप खुलना चाहते हो नो रिस्ट्रिक्शन, जाओ खुली छूट है। ये भगवान का ऐश्वर्य है कि भगवान बिल्कुल ऐसा नहीं कि भगवान को ऐसे जीवों के प्रति प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम है, तभी वो कीड़ा भी बनता है तो भगवान उसके साथ जाते हैं, मल के कीड़े के साथ भी भगवान है परमात्मा के रूप में, और देवता भी बनता है तभी उसके साथ रहते हैं, जब तक उसको वापस लेकर नहीं आएंगे भगवान उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये भगवान रक्षा प्रदान करते हैं एक बद्ध जीव को। और जो अनन्य भक्त है वो तो हमेशा भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहता है, और इसलिए अनन्य भक्त के लिए भगवान प्रकृति के नियम बदल देते हैं। प्रहलाद महाराज को इतनी बड़ी चोटी से नीचे गिराया गया, किसी और बच्चे को लेकर हम ये एक्सपेरिमेंट करें, कितने चांसेस उसके बचने के, अग्नि में डाल दिया, छोटा सा बच्चा और बड़े हाथी के पांव के नीचे दबा दिया, कोई चांसेस हैं बचने के? प्रहलाद क्यों बच रहे थे? जब प्रहलाद अनन्य भक्त हैं, वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान ने बोला ये प्रकृति के नियम से पाल लगेंगे ही नहीं, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं है, ये अंतरंगा प्रकृति के अंदर है, और अंतरंगा प्रकृति के नियम कुछ और होते हैं। अंतरंगा शक्ति बिल्कुल असीमित है, अनलिमिटेड है, उसी कोई सीमा नहीं है, उसे कोई बंधा हुआ नहीं है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौनिताय की, सर्वशालिग्ना विष्णु जी की। तो इस जंग से हम देख सकते हैं कि बद्ध जीवों की भगवान कैसे रक्षा करते हैं, अपने अनन्य भक्तों की भगवान कैसे रक्षा करते हैं। और आप सोच रहे होंगे हमारी क्या स्थिति है, हम अभी पूर्ण रूप से अनन्य भक्त बने नहीं, हम तो साधना कर रहे हैं, हम राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम से कहीं मेरी प्रार्थना करते हैं, कृष्ण बलराम जी बहुत भौतिक आकर्षण है, बहुत ध्यान इधर उधर भटकता है, आप मेरी रक्षा करो। करते हैं कोई लोग ऐसी प्रार्थना? करते ही होंगे। क्या परिणाम मिलता है? आकर्षण फिर बने रहते हैं। अगले दिन आके फिर प्रार्थना करते हैं, कृष्ण बलराम जी मेरे आकर्षण खत्म हो जाए। देखते हैं उसके बाद ही आल्टर से हटते ही आकर्षण फिर बने हुए हैं। तो क्या भगवान रक्षा क्यों नहीं कर रहे? किसी का अनुभव हुआ है ऐसा? बुरी आदतों से छूटने के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान को बोलते हैं छुड़ाओ मेरी रक्षा करना, वहां जाके फिर फिसल जाते हैं। क्या रक्षा की है? बढ़िया बोले भगवान सब चीजों की रक्षा करते हैं, मुझे तो लग नहीं ना भाई क्या हो रहा है ऐसा। फिर डाउट आता कि भगवान रक्षा करते हैं भी नहीं करते। क्या कहना आप? प्रार्थना में कमी है? क्या कमी है? हैं? नहीं चाहते। गुड। हाँ माता जी, तो ऐसा जब होता है तो आप दोनों ने ठीक बताया, भगवान हमारी स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर उपहार दिया है, हमारी स्वतंत्रता, और एक बार देने के बाद उसको कभी भी नहीं छीनेंगे, कभी भी। अपने अपना पुत्र अगर ज़्यादा ही स्वतंत्र हो जाए, माँ बोलती है अब क्या करें, तो दोनों सलाह करते हैं, चलो उसको रस्सी से बांध देते हैं, आगे से इसका आना जाना बंद, इसका मोबाइल छीन लो, गाड़ी छीन लो, चाबी जो स्वतंत्रता दी थी वापस ले लेते हैं हम। भगवान ऐसे पिता हैं, स्वतंत्रता एक बार दीदी वापस नहीं छीनते। अब सोचिए पूरी स्वतंत्रता दे दी, जाओ जो करना है, और उसको कभी वापस नहीं छीनेंगे। और हमने भक्ति शुरू की, हमारे भौतिक आकर्षण काम वासनाएं भी हैं, और हम आकर्षित हो जाते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं फिर आकर्षित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग सही नहीं कर रहे। जब वो मौका आता है कि भौतिक आकर्षणों की तरफ आकर्षित होना है कि नहीं होना, उस समय हम अपनी फ्री विल का, स्वेच्छा का गलत उपयोग करते हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान आकर मेरे सामने से इस भौतिक विषय को हटा देगा। भगवान स्वयं आकर कभी भी बाय फोर्स हमारा जो मटेरियल अटैचमेंट वो कम नहीं करेंगे। हमें अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी, और फिर भगवान पूरी सुविधाएं प्रदान करेंगे, उसके लिए पूरा वो करेंगे। आप बोलेंगे तो बड़ा भारी काम है, मेरे में तो इतनी शक्ति है ही नहीं, इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है, और आप कह रहे हैं अकेले मुझे ही सब कुछ करना है, असंभव। ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन संभव है। भगवान रक्षा कैसे प्रदान करते हैं? एक बार यहां बोले हमें नहीं चाहिए चीज, भगवान हमें क्या करेंगे, पूरी शक्ति प्रदान करेंगे, भगवान पूरी प्रेरणा प्रदान करेंगे, उसी तरह के विचार देंगे जिससे हम उस भौतिक आकर्षण से दूर हो पाएंगे और बच पाएंगे। इस तरह से भगवान एक साधक की रक्षा करते हैं। हरिदास ठाकुर के पास में माया देवी आई, हरिदास ठाकुर को वो बहुत प्रलोभित किया, लेकिन हरिदास ने ध्यान रखा था, फ्री विल थी, इसका भोग करना है नहीं करना, नहीं करना। तो भगवान ने पूरी शक्ति दी, बहुत अच्छे दिन उन्होंने हरिनाम लिया और माया देवी भी भक्त बन गई। एक बार हिज होलीनेस इंद्रदुम स्वामी महाराज थाईलैंड में गए, थाईलैंड के मार्केट में जाके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने सामने से देखा दो युवतियां भागते हुए आ रही हैं उनकी तरफ। तो उन्होंने शायद कुछ इमरजेंसी है, कुछ मेरे से मदद चाहती हैं। दो युवतियां भागते हुए आ रही हैं, और आते ही वो इंद्रदुम स्वामी महाराज के ऊपर कूद पड़े, उनको आलिंगन करने लगा, उनको चूमने लगे। महाराज को एक बहुत बड़ा शौक लगा, दे वर प्रोस्टिट्यूट्स, वो वैश्याएं थी, वो महाराज के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। महाराज ने किसी ढंग से अपने आप को उस चंगुल से उठाया, निकाला और वहां से भागे। साक्षात माया देवी का रूप एकदम उनके ऊपर बरस पड़ा, और किसी ढंग से महाराज उसमें से निकल गए। तो चॉइस थी, पल हर पल हमारे पास चॉइस है। हम लोग बाहर घूमते हैं, बिलबोर्ड्स हैं, और आसपास मेट्रो में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, हर क्षण हमारे पास चॉइस है कि भोग करूं कि सेवा करूं। तो जैसे आप चाहेंगे, भोग मतलब भगवान को भूलना, भगवान भुला देंगे, और सेवा करना मतलब भगवान को याद करना, भगवान हमारी पूरी रक्षा करें। तो भगवान हर जीव के, हर श्रेणी के व्यक्ति की पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं, और वो अच्युत हैं, अपने इस सेवा में कभी भी वो चूकते नहीं हैं। ये तो भगवान ने अपना ड्यूटी पूरा किया। अब भगवान और हमारा संबंध सनातन है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अब जीव का कर्तव्य है, और एकमात्र कर्तव्य है जीव का, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भगवान को शरणागत होना है। वास्तव में जो जीव है वो हमेशा ही शरणागत रहता है। जीव प्रकृति है और जीव आश्रित अवस्था में ही रहता है। किसी ना किसी के आश्रय में रहना जीव का स्वभाव है। और या तो वो माया के आश्रय में रहता है या वो भगवान के आश्रय में। और माया के प्रतिनिधि हैं मन और इंद्रियां। जैसा हमारा मन कहता है, जैसे हमारी इंद्रियां कहती हैं, या तो हम वैसा कार्य करते हैं या फिर गुरु साधु शास्त्र के आदेशों के अनुसार चलते हैं। कहीं ना कहीं हम आश्रित हमें रहना पड़ेगा। और आश्रित रहने से ही संबंध स्थापित होता है। जीव और परम पुरुष का जो संबंध है आश्रय, जीव आश्रय ग्रहण करते हैं और भगवान आश्रय प्रदान करते हैं। और जब जीव भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, कृष्ण का आश्रय ग्रहण करता है, तो फिर संबंध स्थापित होता है और उस संबंध से रस मिलता है, आनंद मिलता है। यानी कि बिना आश्रय के आनंद नहीं मिल सकता ना। और हमारे पास उल्टा कंसेप्ट है, सरेंडर को एक नेगेटिव वर्ड लिया जाता है। सरेंडर, हैंड्स अप, सिनेमा में देखते हैं और व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिया, अब मेरी नहीं चलेगी, है ना। पहले मैं कुछ भी कर सकता था इन हाथों के साथ, काम धंधा कर सकता था, यहाँ से पिस्टल निकालता, यहाँ से चाकू निकालता, आक्रमण करता, अपनी रक्षा करता। अब मुझे बोला गया हैंड्स अप, है ना, सरेंडर, यानी कि गिव अप, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, है ना, अब रहने दो, जो हो जिस स्थिति में हो वैसे ही रहो, हैंड्स अप, है ना। तो हम लगते हैं सरेंडर करना एक नेगेटिव वर्ड है, मैं क्यों लूं शरणागत किसी की, है ना। तो लेकिन ये जीव की वास्तविक स्थिति है। और जैसे हम शरण लेंगे तभी हमारा संबंध स्थापित होगा। अगर हम माया की शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं, ली हुई है, तो वहां संबंध बनते हैं लेकिन वो टेम्परेरी हैं और दुखदाई हैं। तो वास्तव में जो टेम्परेरी चीज है वो संबंध है ही नहीं। संबंध हमेशा सनातन होता है, सम्यक रूपेण बंधन, एक बार पूर्ण रूप से बंधन हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हम संबंध बना लेंगे यहाँ पर अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास की वस्तुओं से, क्योंकि हमने इनकी आश्रय ग्रहण की है। लेकिन उसमें तभी हमें रस नहीं मिलता उनकी आश्रय ग्रहण करने से, क्योंकि संबंध स्थापित नहीं होता। और पत्नी ने पति की आश्रय ग्रहण की, एक्सपेक्ट करती है कि इसमें मुझे सुख मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है, नहीं मिलता। पति ने पत्नी की आश्रय ग्रहण की कि एक ऐसी युवती आएगी जो मेरे सब सपनों को पूरा करेगी, है ना, ड्रीम गर्ल टाइप लड़की आएगी, तो जो आनंद है वो भी ड्रीम में ही रहता है ना। एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर, हमेशा के लिए खुश रहे सपनों में, क्योंकि आश्रय एक दूसरे का ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। हमें आश्रय ग्रहण करना है कृष्ण का, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए शरणागत होना। इसलिए भगवान डंक की चोट में 18 अध्याय के 66वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को त्याग दो, सब कर्तव्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। कैसा लग रहा है ये श्लोक सुन के, सही सही बताइए कैसा लग रहा है, खुशी हो रही है कि डर लग रहा है, बताइए, सच सच बताइए भगवान के सामने, क्या लगता है हमें जब ये श्लोक सुनते हैं। इस श्लोक का उपयोग करते हैं खुद भी डरने के लिए और नए भक्तों को डराने के लिए। सर भरमान पर दिया, वो डांट डर जाते हो, मैं क्या करूंगा, मेरे से तो नहीं होगी भक्ति, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कहीं मेरी छोड़ के चले जाते हैं। इस कौन का पहला ही लेक्चर अटेंड किया वो इसी श्लोक पे, सर धर्मान पर इतिया जा, सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आओ। क्यों मैं सब कुछ छोड़ू, क्यों छोड़ू भाई, अरे सब कुछ छोड़ दो और आ जाओ, बड़ा डर लगता है। और भगवान कह रहे भी है, डरो मत, बिल्कुल मत डरो और आ जाओ सब कुछ छोड़ के, यानी क्या तरीका है। तो वास्तव में इस श्लोक को समझना इतना आसान नहीं है। रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे, मैं वो कथा भूल रहा हूँ, अभी याद आई है, कौन से शिष्य थे जो इस श्लोक समझना चाहते थे, याद है किसी को कथा, हाँ दाशरथ, दाशरथ, तो उनको उन्होंने भेजा था कि बस मणिपुर अपने किसी और बड़े आचार्य के पास भेजा था, जाके उनकी मिनियल सेवा करो, तब जाके आपको ये श्लोक समझ में आएगा। तो श्लोक इतना आसान नहीं है, लेकिन आचार्यों के माध्यम से विष्णु चक्र ठाकुर पाद जी ने इसमें टीका दी है। जब भगवान कह रहे हैं कि सर्व धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, परित्यज्य का अर्थ संन्यास लेना नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि घर बार को छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, ये नहीं है, है ना। परित शब्द आता है, इसका अर्थ है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। तो क्या छोड़ दें, क्या करें, इस श्लोक का ये अर्थ है कि चाहे हमारे अंदर बहुत सी भौतिक वासनाएं भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको बोला जाए सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आओ, तो हमारा एक ही रिप्लाई होगा, प्रभु जी मैं तो अभी बहुत ही कमजोर हूँ, मेरे अंदर बहुत उल्टी सीधी इच्छाएं हैं, मैं तो अभी बहुत कुछ बहुत ही जगत में सुख पाना चाहता हूँ, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कोई और बताइए श्लोक, मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूँ। और वैसे भी आप देखो ना, गीता के अंत में आया, पहले भी तो श्लोक है ना गीता के, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ एकदम आखिरी वाला श्लोक बोला, उसके बाद गीता ही खत्म हो गई है, तो ऐसा मत कीजिए। कोई बीच में कोई भी श्लोक दीजिए, उसके लिए मैं प्रयास कर सकता हूँ, और ये अभी मेरी स्थिति नहीं, आपकी हो सकती है, मेरी अभी स्थिति ऐसी नहीं है, है ना, तो हम ऐसे लगता है। लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं ये सबके लिए है। आप कह सकते हैं हाँ मेरे पास अभी इतनी श्रद्धा ही नहीं है कि मैं भगवान की ऐसी शरण ले लूँ, मेरे मन में अभी डाउट्स हैं, मेरे मन बहुत अभी काम वासनाएं हैं, और मैं कैसे करूँगा ये सब। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं घबराओ मत, आप भगवान कहते हैं कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें सारी श्रद्धा दूंगा जो कि ये भक्ति ये शरण लेने के लिए चाहिए। तो आप बोलेंगे अर्जुन के सामने तो भगवान थे, भगवान खुद उसको ये श्रद्धा दे रहे थे। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बाजी समझाते हैं कि अर्जुन को माध्यम से भगवान हम सबको ये इन्विटेशन दे रहे हैं, ये भगवान की विशेष पुकार है और ये भगवान की कृपा दर्शाती है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने बहुत से योगों का वर्णन किया है, कर्म योग, अष्टांग योग, उसके बाद भगवान भक्ति योग पे आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं डायरेक्टली भक्ति को एक्सेप्ट करो, डायरेक्टली आ जाओ, और इस डायरेक्टली शुद्ध भक्ति को करने के लिए जो आपके अंदर श्रद्धा चाहिए मैं आपको श्रद्धा दूंगा। और अगर मैं नहीं हूं तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं अगर भगवान नहीं है तो भगवान ने ये पूरी शक्ति अपने शुद्ध भक्त को दे रखी है। तो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया, जब वो हिप्पीस के पास गए तो उनको ये नहीं बताया कि पहले आप कर्मकांड करो, फिर कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर अष्टांग योग, ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं, सीधा शुद्ध भक्ति। ऐसे हिप्पीस जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, है ना, मलेच्छ और यवन थे, सीधा बोलो आप चैंटिंग करो बस, तुमने किया और धीरे 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 वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ गए। तो ये श्लोक का अर्थ ये है कि बाकी सारे कर्तव्यों को निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब छोड़ दो। चाहे हमारे अंदर इच्छाएं हैं भोगने की, ज्ञान की, मुक्ति की इच्छाएं हैं, उनकी परवाह मत करो और सीधा इस शुद्ध भक्ति के प्रोसेस को ग्रहण करो, सीधा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यानी कि इसका एक तरीके से अर्थ ये है कि सर्वधर्म परित्याग का अर्थ है कि आप शुद्ध भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार करो, और उसके लिए आपको जो आप अभी कर रहे हैं, जो अपने जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। त्याग भी सकते हैं, नहीं भी त्याग सकते। चैतन्य महाप्रभु से जब रूप और सनातन गोस्वामी मिले, इससे पहले रूप और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठियाँ लिखा करते थे कि हम छोड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। रूप और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के यहाँ मंत्री थे, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर। तो सनातन चैतन्य महाप्रभु ने उनको चिट्ठी में जवाब देते थे कि आप वैसे ही सेव वहाँ पे अपना जॉब करते रहो जैसे कि एक स्त्री का किसी पराये पुरुष के साथ संबंध होता है, तो अपने घर वालों की सेवा बहुत अच्छे ढंग से वो करती है कि उनको कुछ भी शक ना हो जाए। इसी ढंग से आपका संबंध हमारे साथ है, भगवान कृष्ण के साथ आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो आपके जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं बहुत अच्छे ढंग से कीजिए और समय आने पर फिर आप आ जाइए। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले तो उनको तुरंत बोला आप मद्रास के गवर्नर हैं, सब कुछ छोड़ जाओ, आप जगन्नाथपुरी में आओ, हम कथा करेंगे। रामानंद राय ने तुरंत रिजाइन किया और जगन्नाथपुरी में चले गए भगवान के साथ कथा करने के लिए। तो आप हम लोग जो इस श्लोक अपने जीवन में उतारते हैं और विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, ऐसे नहीं है कि घर छोड़ना पड़ेगा। किसी की ऐसी परिस्थिति हो सकती है तो उसको आदेश दिया जा सकता है, नहीं अन्यथा साधारणतया चैतन्य महाप्रभु के अधिकांशतः सभी पार्षद गृहस्थ आश्रम में थे। क्या करना क्या है, इससे पिछला श्लोक जो भगवान ने बोला मन बना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम वेश सत्यम ते पति जाने प्रियो से में, कि चार कार्य करो, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे आदर दो, मुझे प्रणाम करो। तो ये काम करना है, ये काम किसी भी आश्रम में हो सकता है। यानी कि ये शरणागत होने का अर्थ है त्यागना नहीं बल्कि अपनी चेतना को उत्कृष्ट करना, कि हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट करें, है ना, उत्कृष्ट करना। साथ इसका अर्थ ये है कि हम ऊपर उठें, अपनी चेतना को विकसित करें, ये शरणागत होने का अर्थ है। हम लोग जब शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ते हैं और हमें शुरू से बता दिया जाता है कि हम चैंटिंग शुरू करें, जैसे ही हमारे कृष्ण महामंत्र जब शुरू करते हैं हमारा शरणागत की विधि शुरू हो गई। और उसके लिए हमारी इच्छा करती है हम कुछ सेवा करें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ प्रभुपाद जी ने दो बताए अधिकांश ना। एक अर्थ बताया प्रभुपाद ने कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और दूसरा एक और अर्थ बताया प्रभुपाद ने कि हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो राधा रानी और कृष्ण से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज सेव मी, प्लीज एंगेज मी इन सर्विस एंड प्लीज सेव मी। इसका मतलब है दोनों ही पर्यायवाची हैं, यानी कि हम बच सकते हैं भगवान की सेवा में जुड़कर, हम बच सकते हैं भगवान की सेवा में जुड़कर। और जैसे हम यहाँ पर आते हैं हमें कोई ना कोई सेवा भी दी जाती है, हम सेवा करनी शुरू भी करते हैं। अब सरेंडर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्या करना है हमें, अपना शरणागति और बढ़ाना है, और शरणागति और बढ़ाने का अर्थ है अपनी चेतना को और उत्कृष्ट करना है। और चेतना उत्कृष्ट करने का अर्थ है कि जब हम कोई भी सेवा करें तो वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हम देखें कि जी गोस्वामी जी बताते हैं अपने भक्ति संदर्भ में कि शरणागत का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अपना कोई भी मोटिव ना रखना। ये उन्होंने शरणागत का परिभाषा दी, शरणागति की परिभाषा भक्ति संदर्भ में दी। तो हम अपनी जब चेतना को उत्कृष्ट करते हैं तो फिर हम पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित होकर जब सेवा करने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमारे इस शरणागति की क्वालिटी को स्वीकार करते हैं, भगवान हमारे कार्य को स्वीकार नहीं करते। अब समझने का प्रयास कीजिए, भगवान कोई हमारे एम्प्लॉयर नहीं है, बोले कुछ काम करवा दो, ये है ना जन्माष्टमी आ रही है पंडाल लगवा दो बढ़िया सा, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि सब कोई हमारे पर निर्भर है, हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान इस सेवा को स्वीकार करेंगे वो ये करेंगे कि किस चेतना में हमने सेवा की। आपका फिजिकल एक्शन भी इम्पोर्टेंट है जो आपने शरीर से कार्य किया, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस चेतना में आपने ये सेवा की, किस चेतना में हम ये सेवा करते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान उस हमारे हृदय में जो शरणागत के भाव हैं उसको स्वीकार करते हैं और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी प्रारंभ में जब गए थे तो एक प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, एक हिप्पी आया और हिप्पी ने प्रभुपाद को क्या दिया, एक टॉयलेट के अंदर जो कागज पेपर रोल लगता है वो दिया, दिस इज फॉर यू स्वामी जी। अब देखो किसी स्वामी जी को ये दिया जाए, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत अप्रिशिएट किया है ना कि ये बहुत अच्छा इन्होंने किया। इसके बाद जब प्रभुपाद 1970 में सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा हो रही थी तो वहाँ के भक्तों ने प्रभुपाद को कुछ ड्रेस देनी चाहिए, है ना, स्वामी जी को कुछ ड्रेस देनी चाहिए। तो आप जाएंगे हैरान हुए क्या ड्रेस दी, उन्होंने प्रभुपाद के लिए एक बहुत बढ़िया सिल्क का कपड़ा दिया और सिल्क के कपड़े से प्रभुपाद के लिए बहुत बढ़िया सी शर्ट बनाई, उस शर्ट पे सोने के बहुत सुंदर से एकदम बटन लगाए, और जो शर्ट थी कॉबॉय, देखते हैं पिक्चर देखी होगी अमेरिकन पिक्चर, कॉबॉय शर्ट एकदम, और एक छोटी सी हैट प्रभुपाद के लिए, और बहुत बड़ी धोती एकदम लूज करके, और प्रभुपाद ने उसको स्वीकार किया और प्रभुपाद ने उसको डाला। क्या भी फोटोग्राफ्स हैं, प्रभुपाद ने वो शर्ट डाली हुई है और सोने के बटन लगे हुए, सिल्क की शर्ट चमकती हुई और नीचे प्रभुपाद ने धोती डाली है और छोटा सा हैट, बड़ा ऑड सा लग रहा था, प्रभुपाद ने उसको स्वीकार किया। तो स्टार्टिंग अवस्था में ये शिष्य के शरणागति के लक्षण है, वो कुछ करना चाहता है गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं, उनको वो प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते थे, है ना। लेकिन इन्हीं शिष्यों से प्रभुपाद ने कितने बड़े बड़े काम कराए बाद में, इन्हीं शिष्यों ने जो शर्ट दी सिल्क की और ये दी, लगता कि बेवकूफ़ी की, यही बेवकूफ़ शिष्य बाद में बड़े बड़े प्रभुपाद ने बोला इस देश में जाओ उस देश में जाओ, जाओ प्रचार करो, तो चुपचाप चले गए, है ना। इसी ढंग से छोटा बच्चा होता है वो अपने माँ बाप को कैसे प्रसन्न करता है, ता ता करते हैं, माता पिता भी करते हैं ता ता, और थोड़ा सा ता करते हैं, सब इतने खुश होते हैं। अब यही बच्चा 25 साल का हो जाए अपनी मम्मी को खुश करने के लिए ता, अरे क्या ता ता कर लगा रखा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जा मेरे घुटनों में दर्द है, नहीं बोले ता, बोले माँ तुम बदल गई हो, 25 साल पहले इतनी खुश होती थी, मैं चॉकलेट देती, मैं ता करता था, मेरे को गले लगा लेती थी, अब मैं वही तो कर रहा हूँ ता, क्या ता ता लगा रखा है। अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, अब बड़े हो गए हो, अब कुछ सेवा करो मेरी। इसी ढंग से स्टार्टिंग में आती है कुछ भी सेवा मिल जाए हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अटकना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या, हमें और शरणागत होना है और अच्छे ढंग से सेवा करनी है और ज्यादा सेवा करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है।
भक्ति में आने के बाद कई बार संतुष्ट हो जाते हैं, बस अब हम सेट हो गए, अब ये हो गया काम अपना फर्स्ट क्लास, 16 माला कर ली, जाने हो गया, हम सेटल हो गए, हो गया मेरा काम बढ़िया, अब क्या चाहिए, देखते हैं कब तक चलता है, चलाते हैं साथ में, है ना, अच्छा लग रहा है। नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है शरणागत, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है ना। और जैसे कि सनातन गोस्वामी जी ने इसकी परिभाषा दी है कि क्या लक्षण है कि हम शरणागत हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन्होंने 6 लक्षण बताए हैं। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वचनम, रक्षित विश्वासो, गोपतित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्मिता शरणागति। अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको हम त्यागेंगे, इसका संकल्प लेना, इसको करना, यानी कि संकल्प का अर्थ है इसको दृढ़ता से करना, विद डिटर्मिनेशन। हम संकल्प तो ले लेते हैं, परसों से ही चतुर्मास शुरू होने वाला है, हम कई बारी संकल्प लेंगे और लिखते हैं और फिर कई बारी 4 महीने का पूरा नहीं कर सकते, 15 दिन किया, 20 दिन किया, छोड़ दिया। तो संकल्प जो लेना है दृढ़ता से लेना है, दृढ़ता से उसको अपने जीवन में उतारना है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि भक्ति के अनुकूल हैं लेकिन मैं नहीं करता, कुछ बातें हैं ऐसी, कौन सी ऐसी बातें हमें देखना है, अपने मेंटर से पूछना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो भक्ति के अनुकूल हैं, जो मेरी शरणागति को बढ़ाएंगी, और मैं जानता भी हूं लेकिन मैं सोचता हूं मैं इस लायक नहीं हूं, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, या पुरानी आदतों से बार बार मैं चाह के भी नहीं कर पाता, उसका दृढ़ संकल्प, अनुकूलस्य संकल्प। हमेशा हम ये प्रयास करते रहे, ये शरणागति के लक्षण है। जो ये प्रयास नहीं कर रहा, जिस भक्त के अंदर अपने आप को इंप्रूव करने की इच्छा समाप्त हो चुकी है, समझ लीजिए उसका पतन शुरू हो गया है। चाहे हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, 50 साल पुराने भक्त हों या 5 महीने पुराने भक्त हों, भक्ति का अर्थ है हमारे अंदर एक हमेशा प्रगाढ़ इच्छा कि आगे बढ़ना है और इंप्रूव करना है, स्थिति में संतुष्ट नहीं रहना। तो क्या इच्छा, वो कैसे व्यक्त करेंगे, कि जो अनुकूल है उसका हम संकल्प लें, दृढ़ कि ये करना ही करना है। प्रतिकूल से वर्जना, बहुत सी बुरी आदतें हैं जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, जो हम स्वयं लेक्चर में बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं, खुद नहीं कर पाते, सबको समझाएंगे खुद नहीं कर पा रहे, हमें मालूम है गलत बात है, लेकिन हम, हमारी कंडीशनिंग, हमारी नेचर ऐसे, हम उसका पालन नहीं कर पाते। उसका भी दृढ़ संकल्प बने, करूंगा, छोड़ दूंगा इसको, है ना, जरूर छोड़ दूंगा। तो इस ढंग से रक्षित विश्वास हो, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, गोपतित्व वर्णम तथा, भगवान मेरे पालन करता है। आत्मनिक्षेप का अर्थ है कि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, जो इच्छा भगवान की वो इसी ढंग से मैं करूंगा। आत्मनिक्षेपक कार्पण्य, और कार्पण्य का अर्थ है विनम्रता। तो ये 6 लक्षण है, और क्या अनुकूल है ये रूप गोस्वामी जी ने बताया, उत्साह, निश्चय, धैर्य, उपदेशामृत ने। तो भक्ति में हमेशा हमें उत्साहित होना चाहिए, हमेशा। और हमारा मन क्या करता है, हमारा मन हमेशा हतोत्साहित करता है, है ना। अभी परसों नवीन नीरज प्रभु आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक्य बोला था, डोंट लेट योर सेल्फ टू बी डिस्करेज इवन बाई योर सेल्फ। इस संसारी कोई भी वस्तु को हमें हतोत्साहित करने के लिए आज्ञा मत दो, अपने आप को भी, अपने आप के माध्यम से अपने आप को हतोत्साहित मत करो, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो हमेशा हमें नीचे खींचता है। मन जो है वो पानी की तरह है, वो नीचे ही जाता है ना। आप देखेंगे हमारे जो नई बिल्डिंग है उसकी बेसमेंट में हमेशा पानी रहता है, जो मर्जी कर लो पता नहीं कहाँ से आ जाता है, छोटा सा भी गैप मिल जाए पानी नीचे की तरफ ही जाता है। इसी ढंग से मन की टेंडेंसी है उदास करना हमें, पता नहीं यार कोई देखता ही नहीं मुझे, कुछ भी ठीक नहीं है, है ना, सब अपने अपने धुन में मस्त हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मुझे पता नहीं कौन सी सेवा दे दी है, ऐसे सब पार्शल है, सब बेकार है। मन ऐसे सब कुछ ठीक चल रहा होगा, अचानक ये विचार आ जाएगा टीम भक्ति नीचे है, और हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा। सबके साथ इससे मन की, मन ऐसे ही करेगा, हमारे उत्साह को कम करेगा। हमने क्या करना है, अपने बुद्धि के पंप द्वारा पानी को ऊपर खींचते हैं ना, पंप लगाते हैं, तो बुद्धि हमारा पंप है, फिर से मन को ऊपर उठाएं, नहीं ऐसा नहीं है, सब ठीक है, है ना। शास्त्र जो पढ़ते हैं, फिलॉसफी से अपने मन को ऊपर उठाएं, और फिर से भक्ति में उत्साहपूर्ण लगे रहें। तो ये जंग से हम अपने शरणागति को बढ़ाएं। और शरणागति बढ़ाने का अर्थ है कि हम उत्कृष्ट चेतना में रहें, और उत्कृष्ट चेतना का अर्थ है कि हम स्वार्थ रहित होकर सेवा करें। करिष्ये वचनम दवा, अर्जुन ने बोला भगवान को, जो आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं, बड़ा साधारण सा उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है, कि जब कोई व्यक्ति एक नाई के पास जाता है, तो हम नाई कोई भी हो, नए शहर में जाते हैं, किसी भी बड़े नाई के दुकान में चले जाएंगे, नाई बोलता है बैठ जाओ, बैठ जाते हैं,
यूं करो, यूं करते हैं, यूं करो,
हम कह रहे हैं करिष्ये वचनम दवा, और उसके हाथ में बहुत बड़ा उस्त्र है, वह चाहे तो यूं भी कर सकता है, लेकिन हमारा पूरा फेथ है ये नाई है ना बहुत बढ़िया है, कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा, वो कर देता है। उस पर हमने श्रद्धा रखी, जैसा उसने कहा वैसा हमने किया, बाद में देखते हैं हाँ बढ़िया बाल कट गए, वी आर हैप्पी। उसके साथ एक छोटा बच्चा आता है, उसके बाल कटवाने होते हैं, क्या अनुभव होता है, वो सेटल ही नहीं होता उसके माता पिता उसको जबरदस्ती पकड़ा होता है और उसको काटो, तो हमारे भी वही स्थिति है, जबरदस्ती गुरु ने पकड़ा है, सब भक्तों ने पकड़ा है, पकड़ो इसको, जबरदस्ती सरेंडर कराना है तो हमारी तो इच्छा ही नहीं होती बैठने की, और फिर हमारा ऑपरेशन होता है। लेकिन अच्छा यही है, करिष्ये वचनम दवा, जो भी हमें सेवा मिली, एक सेवा दूसरी सेवा से कोई कम नहीं है। किसी को टॉयलेट साफ करने की सेवा मिली, और किसी को बहुत बड़े पंडाल प्रोग्राम में जहां डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है बड़े बड़े चैनल्स में, वहां प्रवचन देने को मिला, कौन सी अच्छी लगेगी सेवा करनी बताइए बड़े बड़े मीडिया के लोग आए हमारे, खट 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 फोटो खींच रहे, इंटरव्यू हो रहे हैं, और यहाँ पर एक टॉयलेट साफ कर रहा है, कौन सी सेवा हम करना चाहेंगे, नेचुरल कौन सी सेवा करना है ना। लेकिन जो टॉयलेट भी साफ करो उसके लिए ये मुझे गुरु के आदेशों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, इसी सेवा को करके मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, इसी सेवा को करके। सेवा को हमने, सेवा एक बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान का, बहुत रेयर रेयर गिफ्ट है। इस संसार के सारे लोग कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। भगवान की सेवा के लिए मैंने एक बर्तन धो दिया, भगवान की सेवा के लिए मैंने झाड़ू लगा दिया, एक प्रसन्नता के लिए टॉयलेट साफ कर दिया, कुछ भी कर दिया, और मैंने अगर इसको शरणागत होकर किया, बस मेरा काम हो गया, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। कितने ही लोग अपने मैरिज पार्टीज में नाचते हैं, भंगड़ा तब सजेगा जब कोई नाचेगा, दारू पीते हैं खूब नाचते हैं, अपने बेटे का विवाह खूब खुश हो रहे हैं, लेकिन यही अगर हम राधा राधिका रमन जी के सामने थोड़ा सा हाथ यूं खड़ा कर दें, एक बूढ़ा व्यक्ति आके पूरा प्रयास करे, भगवान ने पकड़ लिया उसको, वाह मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो सेवा का अर्थ है अपनी प्रसन्नता नहीं देखना। अक्सर हम बोलते हैं हमें वो सेवा दो जो हमें पसंद है, तो ठीक है वो भी शरणागति पहली स्थिति है, करो कुछ तो हम करें। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाए, हमसे ये आशा रखी जाती है कि कोई करिष्ये वचनम दवा, हम अपने देखो क्या स्थिति है, इसके लिए अनुकूल है, ये भक्ति के लिए अनुकूल है, कुछ भी हमें सेवा दे दो हम भेद नहीं करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर दिव्य स्तर पर सभी सेवाएं एक जैसी हैं। और भौतिक स्थिति में बहुत बड़ा भेद है, क्या लैट्रिन साफ करना और कहाँ इतना बड़ा प्रवचन करता बनना, कथा करनी, बहुत फर्क है, लेकिन बहुत आध्यात्मिक स्तर पर दोनों एक समान है। तो ये शरणागति है, करिष्ये वचनम दवा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको शॉर्ट में कुछ हम एसेंस बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस श्लोक में हमने देखा, यमराज जी हमें सिखा रहे हैं कि भगवान हम हर जीव की रक्षा करते हैं, भगवान अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, प्रेमवश भगवान चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो। रक्षा करने का तरीका पद जीव के लिए अलग है, अनन्य भक्तों के लिए अलग है, साधक के लिए अलग है, और अब प्रत्येक जीव को क्या करना चाहिए उसका एकमात्र कर्तव्य है, हम भगवान की शरण लें। भगवान की शरण लेना, भगवान की शरण लेना कोई एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सरल विधि है और बहुत ही आनंददायक विधि है। जितना जल्दी हम भगवान की शरण लेंगे उतना जल्दी हमारे जीवन में आनंद आएगा। और भगवान की शरण लेने का अर्थ है अपनी चेतना को उत्कृष्ट करना। मन हमारा नेचुरली हमारी चेतना को नीचे के स्तर पे लाता है, इसको बुद्धि की माध्यम से इसको ऊपर उठाना, और उत्कृष्ट चेतना में रहकर स्वार्थ रहित होकर जो भी सेवा मिले उसमें उत्साह पूर्वक हम लगे रहें, और इसको हम बढ़ाते रहें, जो अनुकूल है भक्ति को उसको संकल्प करके दृढ़ता से अपने जीवन में उतारते रहें, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको हम संकल्प करके दृढ़ संकल्प के साथ उसको त्यागते रहें। तो इस प्रकार हम शरणागति अपनी बढ़ा सकते हैं और हम अपना कर्तव्य भगवान के प्रति पूरा कर सकते हैं और भगवान की हम शरण ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद।